दिन भर तारीख 25 जून दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। ललित मोदी प्रकरण में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बढ़ रहा है इस्तीफे का दबाव।
मैंने नहीं सुना है मुख्यमंत्री जी ने एक बार कभी कहा हो कि मैंने साइन नहीं किया है या डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। तो वहां पर थी और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं, अब ये भली भांति स्थापित हो चुका है, इसमें अब कोई शक और गुंजाइश की बात बची नहीं है।
वसुंधरा राजे, सुषमा और स्मृति ईरानी कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए?
वो आरोपों की एक तरह से जड़ी लग गई है, तो ऐसे में ये निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किल की बात है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी परीक्षा होगी कि वो इस चुनौती से कैसे निकलते हैं।
जायजा लेंगे बाढ़ से जूझते राज्यों का, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी नेता और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की है। खासतौर पर उस शपथ पत्र के सामने आने के बाद ये विवाद और भी गहरा गया है, जिसमें कथित तौर पर वसुंधरा राजे के हस्ताक्षर हैं। उधर महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। म्यांमार की संसद ने देश के मौजूदा संविधान के जारी रखने के पक्ष में वोट दिया है। इसके तहत देश की सत्ता सेना के हाथ में ही रहेगी। इसका मतलब ये भी है कि विपक्ष की नेता आंग सान सूची के राष्ट्रपति बनने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एक संसदीय समिति ने संविधान में कुछ बदलाव लाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके ज्यादातर सुझाव खारिज कर दिए गए। आंग सान सूची ने पहले कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने पर रोक लगाने वाला संविधान का प्रावधान गलत है। जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगांग शॉयबल ने चेतावनी दी है कि ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। यूरोग्रुप के वित्त मंत्री ब्रसल्स में चौथी बार इस मुद्दे पर मिले, लेकिन किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। जर्मन वित्त मंत्री का कहना है कि ग्रीस के नेता अपनी बात से पलट रहे हैं। हम उस मुद्दे पर बिल्कुल आगे नहीं बढ़े हैं। अब वक्त है कि ग्रीस अपनी जिम्मेदारियों पर फैसला ले और फिर अपनी जनता को बताए कि उनके सामने स्पष्ट प्रस्ताव क्या हैं। अभी तक वे पीछे ही हटे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से उनके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये थे वोल्फगांग शॉयबल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के टैक्सी चालकों की हड़ताल देश के प्रमुख शहरों में जनजीवन को बाधित किया है। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कई जगह दंगा पुलिस को दखल देना पड़ा। पेरिस, टुलूज और मार्से में टैक्सी चालकों ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले रास्तों को रोका। उन्होंने पेरिस रिंग रोड पर भी ट्रैफिक जाम किया। वे ऊबर पॉप की सेवाओं को जारी रखने का विरोध कर रहे हैं। ऊबर पॉप को फ्रांस की अदालतों ने गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी मूल की ये सेवा फ्रांस में इंटरनेट के जरिए अन्य टैक्सी सेवाओं की बनिस्पत कम कीमत पर उपलब्ध है। दक्षिण कोरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 14 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स बीमारी का गंभीर प्रभाव पड़ा है। कई दक्षिण कोरियाई नागरिक सार्वजनिक जगहों पर जाने से बच रहे हैं, जिससे दुकानों, रेस्तरां और सिनेमा हॉलों की आय कम हुई है। कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां आने से बच रहे हैं। सऊदी अरब के बाद मर्स से सबसे ज्यादा प्रभावित देश दक्षिण कोरिया है। यहां अब तक इस बीमारी से 29 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों को अस्पतालों के अलग वार्ड में रखा गया है, ताकि मर्स को फैलने से रोका जा सके। निजेर की सेना का कहना है कि उसने हवाई और जमीनी हमलों में बोको हराम के 15 लड़ाकुओं को मार दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर पद से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी के प्रकरण में राजस्थान की मुख्यमंत्री ने बार बार झूठ बोला। कांग्रेस ने कहा कि उस शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी और पंकजा मुंडे बीजेपी की प्रमुख महिला नेता इस वक्त विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख का दावा करने वाली बीजेपी अब इन नेताओं पर लग रहे आरोपों के चलते कड़े फैसले लेने का उस पर दबाव बन रहा है। आज दिनभर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किए, नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की। पूरी रिपोर्ट दिव्य आर्य से।
भगवा रंग की साड़ी में लिपटा एक पुतला, चेहरे की जगह स्मृति ईरानी की फोटो, कहीं पोस्टर पर लिखा शिक्षा से ना खिलवाड़ करो, स्मृति ईरानी को बाहर करो, तो कहीं दूसरे पोस्टर पर नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता अजय माकन की अगुवाई में सैकड़ों समर्थकों के हुजूम का कुछ ऐसा ही नजारा था।
स्मृति ईरानी जी का हमें इस्तीफा चाहिए, पंकज मुंडे जी का हमें इस्तीफा चाहिए, बीजेपी सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं पीएम साहब उन घोटालों को बंद करें, अपना इस्तीफा दें, हमारी यही मांग है।
तोमर साहब के खिलाफ एक्शन लिया, ठीक लिया, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनको तोमर के जिस तरह तोमर को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए।
दूसरी ओर स्मृति ईरानी के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। अपने मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री पर शर्मिंदगी उठा चुकी पार्टी अब केंद्र सरकार को ललकारने के मूड में दिखी। पार्टी नेता आशुतोष ने पत्रकारों से कहा,
चार चार बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप है और हर दो मिनट पे ट्विटर पर कुछ भी लिखने वाले प्रधानमंत्री जी मौन है। देश जानना चाहता है कि आखिर उनकी राय क्या है। आम आदमी पार्टी आज ये ऐलान करती है कि अगर अगले तीन दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के चार कद्दावर नेता, चारों पर अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मदद करने के आरोप हैं, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मोदी के खिलाफ वित्तीय घपले की जांच कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर चुनाव आयोग को फर्जी डिग्री देने का आरोप है और भ्रष्टाचार का सबसे सीधा आरोप गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे पर है। महाराष्ट्र सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा पर बिना टेंडर मंगवाए आंगनवाड़ी के काम के लिए एक दिन में 206 करोड़ रुपए का सामान खरीदने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने चारों मंत्रियों के लिए सफाई देती ही दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहली नजर में उन्हें पंकजा के मामले में कोई धांधली नहीं दिख रही।
जो चीजें सप्लाई हुई है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो जरूर पंकजा जी ने स्वयं मुझसे कहा है कि आप जांच कीजिए, उसके हम जरूर जांच करेंगे। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि हमने जो आदेश निकाला था उसको ताक पे रखकर ये किया गया, ये बात सही नहीं है।
पर जिस नेता के खिलाफ विपक्षी आवाजें सबसे बुलंद रहीं, वो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। मीडिया में ललित मोदी से जुड़ा एक दस्तावेज सामने आया जिस पर वसुंधरा राजे सिंधिया के दस्तखत होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट,
इस तथ्य को कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। मैंने नहीं सुना है मुख्यमंत्री जी ने एक बार कभी कहा हो कि मैंने साइन नहीं किया है या डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। तो वहां पर थी और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं, अब ये भली भांति स्थापित हो चुका है, इसमें अब कोई शक और गुंजाइश की बात बची नहीं है।
प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो बन गई, पर विश्लेषकों के मुताबिक अब खतरा ये है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और पार्टी की नरमी अगर बरकरार रही तो ये नारा कहीं खोखला न लगने लगे। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए सिर्फ लगभग सवा साल हुआ है और पार्टी की दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैंने बात की बीजेपी पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से और पूछा कि क्या बीजेपी के दुर्दिन आ चले हैं।
नहीं देखिए, उस हद तक तो अभी हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई करप्शन का मामला, उस तरह से पैसे के लेन देन का सामने नहीं आया। लेकिन नैतिक प्रश्न कहें और कम से कम वसुंधरा राजे सिंधिया के मामले में कानूनी पक्ष कहें, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए लॉस ऑफ फेस तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए भी, पार्टी की इमेज के लिए, जिस तरह से सरकार बनी थी, जिन आशाओं और उम्मीदों पर बनी थी, उसको देखते हुए लगता है कि ये बस एक साल में 13 महीने में लोएस्ट पॉइंट है बीजेपी का। ये
आमतौर पर हर चीज में बड़ी ही मुखर रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इन सारे प्रकरणों पर एक भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और अलग अलग पार्टी फोरम पर अलग अलग नेता अलग अलग बयान कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि पार्टी में इन चीजों को लेकर एक राय नहीं है।
एक चीज तो ये है कि जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दें, जैसे अब कीर्ति आजाद जो बोल रहे हैं या शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं, आर के सिंह, उनको छोड़ दें, लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं वो तो राय मशवरे के बाद ही बोल रहे हैं। जो उनकी बातों से निकलकर एक चीज सामने आ रही है वो ये लग रहा है कि फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि इन तीनों में से किसी का इस्तीफा नहीं होगा। वो टेस्ट करेंगे अपोजिशन का। देखिए अलग अलग मामले अलग अलग तरह के हैं। सुषमा स्वराज के मामले में आपने देखा होगा कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर कई विपक्षी दल हैं जो सुषमा स्वराज के समर्थन में या पक्ष में या सहानुभूति रखने वाले हैं। तो उसका फॉलोआउट सुषमा स्वराज के एपिसोड का ये हुआ था कि जो विपक्षी एकता कांग्रेस ने एक साल में बनाई थी वो टूट गई थी। वो एक तरह से बीजेपी को उसका लाभ हुआ। लेकिन वसुंधरा राजे का मामला ऐसा है जिस पर बीजेपी के लिए बचाव करना, उनके पक्ष में दलील देना बहुत मुश्किल होगा। खास तौर से ये साइन डॉक्यूमेंट जब से सामने आया है तब से उनका बचाव कर, देखिए 2010 से पहले का मामला होता तो शायद आसान होता पार्टी के लिए। अभी बड़ा नुकसान भले न दिखाई दे लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर बिहार के चुनावों पर भी पड़ सकता है, आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है।
स्मृति ईरानी के मामले को कैसे देखते हैं? इसमें भी पार्टी तो भाई पार्टी के पास बचाने के लिए खुद को क्या बचाएंगे?
टेक्निकल मामला ये है कि 2004 और 2011 में जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया था तब ये 2012 में जो अमेंडमेंट आया है जिसमें एफिडेविट देके इसको पनिशेबल बनाया गया नहीं बनाया गया था, एक साल के अंदर अपील करनी होती है तो उनको एक एक तकनीकी लाभ है उस मामले का। अब अदालत 2014 के मामले का किस तरह से संज्ञान लेती है, उसमें उनका पक्ष सही है या गलत है, इसीलिए अभी उनको समन नहीं किया है कोर्ट ने।
किरकिरी तो भारतीय जनता पार्टी की है ही है ना?
निश्चित रूप से, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो पार्टी अभी 3 हफ्ते पहले दावा कर रही थी कि कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, हमारे विरोधियों ने भी, वो आरोपों की एक तरह से झड़ी लग गई है। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किल की बात है।
आने वाले समय में पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए?
बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इस सरकार का ये मानसून सेशन जो है राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी परीक्षा होगी कि वो इस चुनौती से कैसे निकलते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की दुश्वारियां, उसकी चुनौतियां, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
मानसून की दस्तक के साथ झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है लेकिन बारिश अपने साथ आफत भी लाई है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम से लेकर मध्य भारत के कुछ राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा गुजरात प्रभावित है। छत्तीसगढ़, असम में भी हालात मुश्किल हैं। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है। एक रिपोर्ट के साथ सुशीला सिंह।
गुजरात को बारिश का बेसब्री से इंतजार था लेकिन मानसून ने दस्तक दी तो नई मुश्किल साथ आई। लगातार तेज बारिश की वजह से गुजरात के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात की ज्यादा जानकारी के साथ अहमदाबाद से अंकुर जैन।
गुजरात में पिछले 40 घंटों में हुई लगातार हुई बारिश से राज्य में तबाही मची हुई है। गुजरात के 7-8 जिले प्रभावित है जिसमें खास करके राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, अहमदाबाद और सूरत है। पिछले 10 घंटे से बरसात रुकी हुई है लेकिन पिछले 40 घंटों में हुई बारिश के कारण 50 से अधिक लोगों के मरने की पुष्टि गुजरात सरकार कर चुकी है। अकेले अमरेली में ही 23 लोगों के शव पानी में तैरते हुए मिले थे। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कई गांव ऐसे हैं सौराष्ट्र में, खास करके अमरेली के आसपास और जूनागढ़ के आस पास, जहाँ भी गाँव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। NDRF की टीम लगी हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पूरे एरिया का एक एरियल सर्वे किया था लेकिन मामला चूंकि बिगड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में और ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते स्टेट में एक हाई अलर्ट घोषित कर दी गई है।
गुजरात के सौराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सभी जिलों में सोमवार तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उधर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद झेलम का जल स्तर बढ़ गया है। अनंतनाग में बाढ़ का पानी बस्तियों में चला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी बाढ़ का पानी आ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से BBC संवाददाता रियाज मसरूर।
पिछले 24 घंटे तक लगातार वर्षा होने के कारण झेलम नदी के पानी का स्तर जो है वो गंभीर रूप से ऊपर आया हुआ है और जैसा कि पिछले साल बाढ़ की स्थिति से अभी लोग जूझ ही रहे हैं इसलिए पैनिक का सा माहौल है क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में कुलगाम और अनंतनाग के कई बस्तियों में बाढ़ का पानी जो है वो नदी के ऊपर से बस्तियों में चला गया और पांपोर और सेम्पोरा के करीब जो नेशनल हाईवे है यानी जम्मू और श्रीनगर को मिलाने वाली हाईवे उस पे भी पानी आ गया क्योंकि जो नदी का स्तर है पानी का वो बिल्कुल रोड के साथ बराबर बराबर है, हालांकि अभी ब्रीच नहीं हुआ है कहीं पे भी। हालांकि जो गेज लगा हुआ है दरिया में कई जगह पे वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था आज सुबह भी, लेकिन बाद में दिन में 2-3 घंटे तक धूप निकल आई और उससे खतरा हल्का सा टल गया। लेकिन मजीद बारिश का फोरकास्ट किया गया है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आज रात में और कल दोपहर तक। लेकिन गवर्नमेंट ने जो जहलिम के पास रहने वाले लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया हुआ है।
बाढ़ के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के प्रभावित इलाकों में फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी को 24 घंटे ड्यूटी पर लगा दिया गया है। वहीं मध्य भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में बाढ़ की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में पिछले कुछ दिनों में बारिश ने खूब परेशान किया है। पिछले सप्ताह तो हालत ये थी कि बस्तर संभाग के 7 जिलों में लगभग 72 घंटों तक लगातार बारिश होती रही। इस बारिश के कारण सोमवार को राजधानी रायपुर से बस्तर का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। हजारों की संख्या में बस, ट्रक और कारें जहां की तहां खड़ी थी। बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 3 लोगों की मौत अब तक हुई है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, कांकेर जैसे जो इलाके हैं वहां सैकड़ों गांव अभी भी टापू में बदले हुए हैं, जहां बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। इलाके की मिंगाचल और शबरी जैसी नदियां खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही हैं।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिन सावधान रहने की चेतावनी दी है। उधर पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में 5 जिलों के 30,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। राज्य में ताजा स्थिति की जानकारी दे रहे हैं दिलीप शर्मा।
असम के कुल 5 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं अब भी। इनमें बरपेटा, धेमाजी, मोरीगांव, लखीमपुर, चिरांग जिले में करीब 30,000 लोग अब भी बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित। इन प्रभावित जिलों में सबसे ज्यादा लखीमपुर जिले में तबाही हुई है बाढ़ के कारण। 14 गाँव में अभी बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। इसके अलावा बरपेटा जिला भी काफी स्थिति खराब हुई बनी हुई है। जिला प्रशासन से जो जानकारी मिल रही है अभी इसमें अगले 2-3 दिनों सुधार की गुंजाइश नहीं है।
असम के जिन जिलों में बाढ़ का असर कम हुआ है वहाँ शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोग अब घर लौट रहे हैं।
ये था देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और उससे पीड़ित लोगों का हाल। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। भारत और चीन ने भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे नेपाल को बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आज राजधानी काठमांडू में दानदाताओं के एक सम्मेलन की शुरुआत की। अप्रैल और मई में आए भूकंप से तबाही के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए सहयोग जुटाने के मकसद से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत नेपाल को $1 अरब और चीन $50 करोड़ देगा। इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ मैंने पूछा बीबीसी की नेपाली सेवा के संवाददाता संजय ढकाल से।
देखिए आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेपाल रिकंस्ट्रक्शन का एक आयोजन किया गया था और उसमें सुषमा स्वराज जी ने भारत की तरफ से $1 बिलियन की सहयोग करने की घोषणा की। दूसरे डोनर और दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज ने जो कमिटमेंट किया था उसमें सबसे ज्यादा भारत की तरफ से आया है और वो मतलब 1/4 उसमें से ग्रांट के रूप में आएगा और बाकी कंसेशनल लोन के रूप में आएगा। मतलब ऐसा बताया है सुषमा स्वराज जी ने। ये 5 साल तक के लिए सहयोग की राशि घोषणा की उन्होंने।
PDNA रिपोर्ट estimates huge reconstruction needs of $6.7 billion.
सुषमा स्वराज ये कह रही थी जो नेपाल की सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करके PDNA की एक रिपोर्ट बनाए थे तो उस रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल को पुनर्निर्माण में $6.7 बिलियन आवश्यक होंगे। मतलब इतना ज्यादा रकम जुटाने बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस कार्य में नेपाल अकेला नहीं रहेगा। उसको बहुत सारे मित्रों और दाता का सद्भाव और सहयोग प्राप्त है और भारत अपने सबसे पुराना और निकट छिमेकी मित्र नेपाल को सहयोग करने के लिए अपनी तरह से जिम्मेवारी ग्रहण करने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारत हमेशा तैयार है, ऐसा बोली है उन्होंने।
इस कॉन्फ्रेंस में भारत के अलावा चीन है वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। चीन की ओर से किस तरह की मदद आई है?
नेपाल का दूसरा जो निकट छिमेकी है वो चीन है तो मतलब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी आए थे। उन्होंने भी काफी बड़ी परिमाण के सहयोग की घोषणा की है। मतलब लगभग भारत की जो घोषणा है उसके 3/4 की रकम की घोषणा सहयोग की घोषणा चीन की तरफ से भी हुआ है। उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन घोषणा की, मतलब सेपरेटली भी देने को वाचा किया है। और चीन के अलावा जापान से भी काफी बड़ा घोषणा हुआ है। जापान, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और दूसरे देश सार्क के देश के प्रतिनिधि भी आए थे। सभी ने सहयोग करने की घोषणा की है और उन्होंने अपनी अपनी तरह से अपने अपने देश के वित्तीय नहीं तो प्राविधिक सहयोग करने की बात की है।
संजय, ये बताएं कि नेपाल की ओर से जो एक्सपेक्टेशन है उस पे ये देश कितने खरे उतरे हैं और विशेष रूप से भारत?
नेपाल के अधिकारी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे एक सम्मेलन में। भारत का बहुत बड़ी परिमाण में घोषणा भी हुआ है और देखिए 6.7 बिलियन डॉलर की जो नीड असेसमेंट की गई है तो उसमें नेपाल का ये मानना था कि करीब एक तिहाई 1/3 तक विदेशी सहायता प्राप्त हो, तो मतलब उससे ज्यादा होने की प्रति कमिटमेंट आई है। तो नेपाल सरकार और अधिकारी काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे।
भारत ने भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे नेपाल को बड़ी मदद देने की घोषणा की। जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी संजय ढकाल। और अब आपकी राय।
नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। इंदु पांडे हैं मेरे साथ स्टूडियो में और मैं देख रहा हूं इनके पास ईमेल, पोस्टकार्ड, हर तरह की चिट्ठियां हैं। इंदु जी, क्या कह रहे हैं हमारे श्रोता?
हमारे पहले श्रोता हैं मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से। इनका कहना है कि भाई पूरी बीबीसी टीम को पहले तो प्यार भरा नमस्कार, और कहते हैं कि इस बार दुनिया जहान में लैटिन अमेरिकी देश की भ्रष्टाचार की समस्या पर की गई अशोक कुमार जी की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा शबाना आजमी से वंदना जी की बातचीत भी इन्हें बहुत अच्छी लगी, और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से दिव्या आर्या की बातचीत भी अच्छी लगी। कुल मिलाके ये सिर्फ धन्यवाद कहना चाहते हैं इस अच्छाई पे।
बहुत शुक्रिया आपका, और अगर आपको कोई सुझाव भेजना हो हमें या कोई शिकायत भी करनी हो तो आपका बहुत स्वागत है। फिलहाल आपने जो हमारी तारीफ की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और दूसरा खत है हमारे पास एहसान असगर का, जिला बुलराणा महाराष्ट्र से। कहते हैं कि आप लोगों ने चारों सभाओं के नाम बदल दिए, उनकी धुनी भी चेंज कर दी, इससे क्या फर्क पड़ा? ये तो यही हुआ ना कि नई बोतल पुरानी शराब।
कार्यक्रमों का नाम बदलने का और उनकी धुन बदलने के पीछे कई बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब, क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता है, हमारा जो काम करने का ढंग है, आप तक खबरों को पहुंचाने की हमारी जो ललक है, हमारा जो अपने ख़ास तरीके से अपने श्रोताओं से जुड़े रहने की जो इच्छा है, उसमें से कुछ भी नहीं बदला है। तो वो सब आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो अपनी जगह है, लेकिन जो संगीत का और नाम का जो नयापन है वो भी हमारे श्रोताओं को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ये आपकी राय है, और इस मामले में मैं आपसे सहमत हूँ कि जो बीबीसी की पत्रकारिता है और बीबीसी की जो परंपरा है वो अब भी वैसी ही है, नाम भले उसका बदल गया हो।
और इनका एक सुझाव है कि चारों सभाओं के बीच का टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए या एक एक घंटे की दो ही सभाएं रखिए।
बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनमें से काफ़ी तकनीकी वजहें हैं और प्रसारण के जो सुविधाएं हैं उनका संबंध है, तो इस तरह के बदलाव बहुत जल्दी जल्दी कर पाना या बार बार कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होता।
और ये तीसरी चिट्ठी हमारे पास आई है मनु दत्त शर्मा, जिला हिसार हरियाणा से। कहते हैं कि नारायण बारेठ की रिपोर्ट सुनकर बहुत अच्छा लगा, उनकी भाषा शैली भी बहुत ही उम्दा थी जिसका कोई जवाब नहीं। और इनकी बस एक छोटी सी शिकायत है कि इन्हें आदेश कुमार गुप्त की कोई प्रशंसा बीबीसी पर सुनने को नहीं मिलती है, जबकि कहते हैं कि वो बहुत ही उच्च कोटि के खेल पत्रकार हैं।
आदेश जी उच्च कोटि के खेल पत्रकार हैं, आपने ये खुद कहा, हम भी ये मानते हैं। और उनकी प्रशंसा का जहां तक सवाल है, मुझे याद है कि कुछ समय पहले ऐसे ही पत्रों के कार्यक्रम में किसी ने उनको खेल पत्रकारिता का अमिताभ बच्चन कहा था।
जी बिल्कुल ठीक, मैंने भी सुना था।
जी तो ऐसा नहीं है कि उनकी प्रशंसा नहीं होती या उनकी प्रशंसा नहीं करते। जब आप जैसे लोग हमें जो लिख भेजते हैं उनकी तारीफ में, हम मौका मिलता है तो उसका प्रसारण करते हैं।
और ये चिट्ठी आई है लोकेश कुमार की पुलिस लाइन धनबाद से। कहते हैं कि पाकिस्तान की डायरी में भारत पाक रिश्तों पर जो बात होती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ और जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि शबे रात में पटाखे छोड़ना इस्लाम धर्म में जायज है या नहीं।
देखिए, इसका जवाब तो कोई आलिम ही आपको दे पाएगा, मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सांस्कृतिक तौर पर ये जानता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में जिनको इस्लामी देश कहते हैं वहां ऐसा नहीं होता। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो दक्षिण एशियाई देश हैं वहां लोग करते हैं, तो ये एक सांस्कृतिक अंतर है अलग अलग देश देशों में कल्चरल डिफरेंस है जो होता है। इस्लाम में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है ये तो आपको किसी आलिम से पूछना पड़ेगा। और पोस्ट कार्ड दिख रहे हैं मुझे ढेर सारे।
जी हाँ, ये पोस्ट कार्ड है और पोस्ट कार्ड देख के मुझे भी बहुत खुशी मिलती है।
और पोस्ट कार्ड वाले हमारे श्रोता अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी चिट्ठियाँ कम शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये शिकायत भी अब आप दूर कर दीजिए।
जी, ये है ओम प्रकाश पाठक, नागवा बलिया यूपी से। कहते हैं कि 14 जून को गुजरात में मुसलमानों के घर पर हिंदुओं के कथित विरोध की रिपोर्ट व्यथित करने वाली थी, ये पूर्णतया अनुचित है।
बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है, और हम तो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, और ये बात हिंदुओं के अत्याचार की या मुसलमानों के अत्याचार की नहीं है, जब जहाँ कहीं अत्याचार होता है, जब जहाँ कहीं जुल्म होता है, उसको रिपोर्ट करना हमारा काम है। और जाहिर है कि सहानुभूति आपकी ज़रूर होगी उसके साथ जो भी उस जुल्म का शिकार हुआ हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
आगे इनका कहना है कि रिपोर्टिंग के अंत में शकील अख्तर जी द्वारा ये कहा जाना कि मोदी के 15 वर्ष के राज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बहुत बढ़ गई थी, क्या बीबीसी के मंच पर ये बात उचित लगती है?
ये बात इसलिए उचित लगती है क्योंकि हमने जितने लोगों से बात की गुजरात में, हम जिन लोगों से मिले, वो उन्होंने हमसे माइक्रोफोन पर रिकॉर्डेड बातचीत में ये कहा है कि उनको ऐसा महसूस होता है, तो उनकी बात आप तक पहुंचाना हमारा काम है। आज फिलहाल इतना ही। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं hindi.letters@bbc.co.uk, और अगर आप हमें डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। इंदु पांडे और राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए।
नमस्कार।
आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली, और अब खेल की खबरें भी सुन लेते हैं।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर, और आज से शुरू है एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आज मुकाबला है इंग्लैंड में केंट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कैंटरबरी में। न्यूजीलैंड से हाल ही में हुई सीरीज से खुश है इंग्लैंड के खिलाड़ी जिमी एंडरसन।
I think we've got to be positive about it. We've, you know, starting with the test against New Zealand, I thought we played really well and started.
हम न्यूजीलैंड के साथ हुई सीरीज के बाद कॉन्फिडेंट हैं, हमारा नजरिया दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। उम्मीद है कि जैसा प्रदर्शन हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाया, वैसा ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाएंगे टेस्ट मैचेस में। खिलाड़ियों का एटीट्यूड, उनका रवैया बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी टीम में बहुत से नौजवान खिलाड़ी हैं जो पूरे जी जान से खेलेंगे। हमारे पास बहुत टैलेंट है, उम्मीद करता हूँ सब अपना नेचुरल गेम खेलेंगे फील्ड पर।
इंग्लैंड में होने वाले इस एशेज सीरीज में पहला टेस्ट मैच होगा 8 जुलाई से कार्डिफ में। अब बात टेनिस की। 146 वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी जोहाना कांटा पहुंच गई हैं एगोन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल्स में। उन्होंने तीसरे राउंड में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को 6-4, 4-6, 6-3 से हराया। जोहाना कांटा अपने आप को काफी खुशकिस्मत मानती हैं कि वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई।
गार्बिन ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैंने मौका ढूंढा और उनका फायदा उठाया। उनके रिटर्न बहुत अच्छे थे, मैंने बस गेम पर पूरा ध्यान दिया। वो दो ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं और एक अच्छी खिलाड़ी हैं। मैं बहुत किस्मत वाली रही, मैं क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर काफी खुश हूं।
वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश नंबर 1 टेनिस प्लेयर हेदर वॉटसन हार गई स्लोएन स्टीफन से। और बेल्जियम में चल रहे हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल राउंड में कल मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये मुकाबला होगा बेल्जियम के एंटवर्प में। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है अगर उसे पहुंचना है 2016 में होने वाले रियो ओलंपिक्स में। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पार्टी नेता और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग की है। म्यांमार की संसद ने देश के मौजूदा संविधान को जारी रखने के पक्ष में वोट दिया है, इसके तहत देश की सत्ता सेना के हाथ में ही रहेगी। जर्मनी के वित्त मंत्री वोल्फगांग शोएबल ने चेतावनी दी है कि ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। फ्रांस के टैक्सी चालकों की हड़ताल ने देश के प्रमुख शहरों में जनजीवन को बाधित किया है। दक्षिण कोरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 14 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। निजेर की सेना का कहना है कि उसने हवाई और जमीनी हमलों में बोको हराम के 15 लड़ाकुओं को मार दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अब अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिलहाल नमस्कार।